हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह अंबिका की आँख खुली। जमाही लेते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे मिचमिचाते हुए अपनी आँखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। आँखें खुलने पर उसे आसपास वही कमरा नजर आया जहाँ वो कल रात थी। कल रात की सारी बातें याद आते ही वो एकदम उठकर बेड पर बैठने लगी, लेकिन उसे अपनी पूरी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ और वो उठ नहीं पाई। उसी तरह लेटी हुई नज़र घुमाकर इधर उधर देखने पर उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था, न कमरे में न उस बेड पर। अंबिका को पिछली रात की सारी बातें एक एक कर याद आने लगीं, जैसे सब कुछ उसकी आँखों के सामने चल रहा हो। वेदांश और उसके बीच हुई बातें याद आते ही उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और अपने आप से बोली, ये सब क्या था? सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बदन टूट रहा है। और मेरे कपड़े कहाँ हैं? इतना बोलते हुए अंबिका ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे अपने कपड़े नजर नहीं आए। वो कंबल के अंदर बिना कपड़ों के थी। उसने कंबल को अपनी गर्दन तक खींच लिया। तभी दरवाज़ा खुलने की आहट हुई तो अंबिका ने अपना सिर कंबल के अंदर छुपा लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वहाँ कौन आया है, लेकिन उसे लगा कि वेदांश ही होगा और इस वक्त वो उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ी, मैडम, ये खाना और कपड़े आपके लिए हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ आने की परमिशन नहीं है और आप भी यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। औरत की आवाज़ सुनकर अंबिका ने धीरे से एक तरफ से कंबल हटाया और बोली, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुम कौन हो? सामने खड़ी लगभग 30-35 साल की औरत ने एक ड्रेस पहना हुआ था, जो शायद वहाँ काम करने वाली मेड और सर्वेंट का ड्रेस था, काला और सफ़ेद रंग का। अंबिका को इतना ही समझ में आया। जैसे ही उसने कहा कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो औरत चली गई। अंबिका का दूसरा सवाल जैसे उसे सुनाई ही नहीं दिया। अंबिका कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो औरत बाहर निकल गई और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। सामने रखी बड़ी सी ग्लास टेबल पर रखे खाने और कपड़ों की तरफ देखते हुए अंबिका ने अपने मन में कहा, क्या ये सब उस डेविल वेदांश ठाकुर ने भेजा है मेरे लिए? लेकिन उसे मेरी इतनी क्या पड़ी है? और वैसे भी वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन वो नहीं तो फिर और कौन? मुझे नहीं लगता किसी को मेरे बारे में पता भी है। ये मेड भी इतनी डरी हुई लग रही थी, खुद से कुछ भी लेकर नहीं आई होगी। ज़रूर बोला होगा उसने ही। ये सब सोचते हुए अंबिका किसी तरह अपनी जगह से उठी, कंबल को पूरी तरह से अपने बदन पर लपेट लिया और फिर धीरे से आगे आई। उसने टेबल पर रखे खाने और कपड़ों को देखा। उसे भूख लगी हुई थी, लेकिन ऐसे ही वो खाना नहीं खाना चाहती थी। पहले उसका नहाने का मन कर रहा था, इसलिए हल्का सा झुककर उसने पहले कपड़े उठाए और साइड में बने वॉशरूम की तरफ चली गई। उसे अपनी बॉडी में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन अब वो उतना ज्यादा नहीं था। अब उसकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेदांश ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसे लगा था कि उसने उसके साथ रात बिता ली है, तो हो सकता है अगली सुबह वो खुद ही उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दे, क्योंकि अब उसे साथ रखने का कोई मतलब नहीं था। वेदांश को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था, लेकिन अभी तो वो यहाँ पर था ही नहीं। अंबिका को अपनी फैमिली की भी टेंशन हो रही थी। अंबिका वॉशरूम में आई और कंबल वॉशरूम के दरवाजे से बाहर ही छोड़ दिया। इस वक्त उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो वैसे ही शावर के नीचे खड़ी हुई और शावर ऑन कर लिया। शावर का पानी उसके चेहरे से होता हुआ पूरी बॉडी पर गिर रहा था। उसने अपने हाथों से अपने बालों को पीछे किया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। सामने लगे बड़े बाथरूम के मिरर में उसे अपना चेहरा नजर आया। उसका चेहरा काफी अलग लग रहा था, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पाई कि क्या डिफरेंस है। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा डल लग रहा था। कमजोरी की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। इसी वजह से उसे वीकनेस हुई थी और वो बेहोश भी हो गई थी। अपने चेहरे को ध्यान से देखते हुए अंबिका की नज़र अपनी गर्दन पर आकर रुक गई, जहां उसे एक गहरी बैंगनी या नीले रंग का निशान नजर आया। अंबिका ने धीरे से उस पर अपना हाथ रखा, तब उसे अचानक वेदांश का उसे गर्दन पर काटना याद आया। उसे ऐसा लगा जैसे अभी भी वेदांश का स्पर्श, उसके चुंबन और उसका काटना अपनी बॉडी पर महसूस हो रहा हो। वो शीशे के थोड़ा नज़दीक आई और देखा तो उसकी गर्दन, कंधे से लेकर चेस्ट और पूरी अपर बॉडी पर हर जगह इस तरह के निशान थे, कुछ गहरे तो कुछ हल्के। उन सारे निशानों पर एक एक कर अपनी उंगली रखते हुए अंबिका ने धीमी आवाज में कहा, ये क्या किया है इस आदमी ने मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ? पता नहीं क्यों ये सब और इस तरह के निशान, पता नहीं ये जाएंगे भी या नहीं। ये बात सोचते हुए अंबिका को वेदांश पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही जब उसे पिछली रात उसके साथ बिताए हुए पल और पूरी रात याद आई, जिस तरह वो भी ना चाहते हुए भी उसके साथ उस मोमेंट और उसके स्पर्श और चुंबनों को एंजॉय कर रही थी, ये सोचकर अंबिका ने गहरी सांस लेते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उसकी आंखों के सामने वेदांश का चेहरा आया तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं और बोली, नहीं, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने सिर्फ मुझे मजबूर करके मेरा फायदा उठाया है और कुछ नहीं। लेकिन मैं इंजॉय कैसे कर सकती थी उस मोमेंट में? मुझे कुछ भी गलत क्यों नहीं लगा? शायद मेरा पहला अनुभव था, इसलिए हो सकता है मेरी बॉडी ने ऐसा रिएक्ट किया हो। हाँ, ऐसा ही होगा और कुछ नहीं। मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया था। लेकिन कैसे, जब वो सब कुछ मेरी मर्जी के बिना हुआ था तो फिर क्यों? क्यों मैं उसके गले लगकर सोई थी ऐसे कल रात, और उसने भी खुद से दूर नहीं किया था मुझे। वो चाहता तो अपनी मर्जी पूरी करने के बाद मुझे खुद से दूर कर सकता था या फिर वहां से जा सकता था, जो कुछ भी, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया, क्यों? अंबिका के मन में ऐसे कई सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था उसके पास। वेदांश से तो वो इस बारे में पूछ भी नहीं सकती थी, ना ही वो उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था वेदांश से पूछने का कोई फायदा नहीं है, वो उसे सीधा जवाब बिल्कुल नहीं देने वाला। अपने मन में आ रहे इन सारे सवालों को कुछ देर के लिए अंबिका ने अपने दिमाग से झटक दिया और अपने साथ लाए हुए कपड़े पहनने लगी। एक सफ़ेद रंग का प्लाजो और काले रंग का कुर्ता जो काफ़ी अच्छा था। अंबिका को वो अच्छे से फिट भी आ गया और वो उन कपड़ों में काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। उसने साइड में रखा हुआ तौलिया उठाकर अपने बालों को पोंछना शुरू किया। उसी तरह बाल पोंछते हुए वो वॉशरूम से बाहर आ गई। जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कि वेदांश वहाँ पर सामने बैठा हुआ था और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। अंबिका ने भी उसे देखा तो वो काफ़ी हैरान हो गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि वेदांश कमरे में वापस आ चुका होगा। क्रमशः क्या बोलेगा अब वेदांश? क्या वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलेगा? क्या अंबिका खुद उसे वहाँ से जाने के लिए कहेगी या फिर अपनी फैमिली के बारे में? क्या वो दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ आकर्षित हैं या फिर इससे ज़्यादा भी कुछ है? और हो सकता है उन दोनों के बीच क्या लगता है? आप लोगों को बताइए कॉमेंट में।